ओम शांति। देखो शिव बाबा परमधाम से इस सृष्टि पर किसके लिए आता है? अपने बच्चों को हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस वर्षा देने के लिए आता है। और बच्चों की भी बाप पर यही इच्छा रहती है कि बाप आएगा तो हमको हर प्रकार से भरपूर करेगा। और बाप की भी इच्छा होती है मेरे बच्चे मांगने वाले नहीं दाता के बच्चे देने वाले हैं, तो देवता बनाता है। तो फिर प्रश्न आएगा कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कि जो भी हम यहां बैठे हैं सब भी बाबा के बच्चे हैं और किसी के नहीं है, तो हर एक को बाप समान वर्षा देगा ना, कि बड़े बच्चे को ज्यादा छोटे बच्चे को कम, ऐसे नहीं। तो बाप के सभी बच्चे तो सभी को इक्वल राइट है, तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलना चाहिए। तो प्रश्न आता है क्या हर एक आत्मा को पूरा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगा? तब बाबा ने एक शब्द जोड़ दिया, पुरुषार्थ अनुसार। तो अगर मुझे पूर्ण हेल्थ चाहिए, पूर्ण वेल्थ चाहिए, पूर्ण हैप्पीनेस चाहिए, तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? आएगा ना, क्या पुरुषार्थ है हर एक के लिए? तो बाबा की व्यवस्था है, अगर सारे कल्प में इस शरीर को कभी भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आना चाहिए, एवर हेल्दी कहा, गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए, उसके बाद भी है लेकिन गारंटी पीरियड, तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो हरेक को एक जैसा देगा, पार्शियलिटी तो नहीं करेगा, ये मेरा अनन्य है ये कनिष्ठ है ऐसा तो नहीं। तो व्यवस्था क्या है, तो पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने व्यवस्था दिया बहुत सारे मूल्यों में कि बच्चे स्वयं भाग्य विधाता इस धरती पर आकर यज्ञ रचता है, उस यज्ञ के अंदर ब्राह्मण चाहिए। अगर ब्राह्मण कोई एक मिनट इस यज्ञ की सेवा तन से अगर सेवा करता है, एक का पदम गुना, मैं नहीं देता हूं ये यज्ञ देता है। जैसे दुनिया में धरती पर एक बीज बोलो भगवान ने देता है, ये धरती, धरती मां आज भी 15-20-25 दाना उगाती है, तो विधि वो बताता है। तो भगवान आके विधि बताता, एक मिनट इस रुद्र यज्ञ की, अश्वमेघ यज्ञ कहा, इसी यज्ञ के एक मिनट इस तन से सेवा करो, तो एक का पदम गुना, एक जन्म निरोगी काया मिलेगा, ये विधान। अब मुझे पूछना है कि मैं इस रुद्र यज्ञ की इस तन से 24 घंटे के अंदर कितनी सेवा करता हूं, क्योंकि वो भोलानाथ भी है चतुर सुजान भी है बहुत समझदार भी है, तो बच्चों के ऊपर ही डाल देता, बच्चे आपके हाथ में तकदीर है भाग्य है, एक जन्म के लिए ले लो, 21 जन्म के लिए ले लो, 84 जन्म के लिए ले लो, वो आपके हाथ में है, जितना आप करेंगे। अब मुझे चेकिंग कर देखना है कि मैं 24 घंटे के अंदर ये तन से इस यज्ञ की कितनी सेवा करता हूं, ये एक व्यवस्था। क्योंकि अश्वमेघ, अश्व माने घोड़ा, ये तन भगवान की सेवा में लगाओ, कि उसने आकर इस सारी सृष्टि में ये यज्ञ रचा है, तो विधि बताता है। दूसरी एक विधि बताया कि अगर आपको कभी गरीब नहीं बनना, सदा साहूकार वेल्थी वेल्थ चाहिए, ऊपर से वेल्थ तो नहीं भेजेगा, सोना हीरा नहीं भेजेगा, व्यवस्था बताता है। तो अगर आपको वेल्थ चाहिए तो हम लेके नहीं आए थे, ना लेके जाएंगे धन, यहां का ही इकट्ठा किया है। तो उसमें से 1% भी इस भगवान की रुद्र यज्ञ की सेवा में लगाते हो, ये यज्ञ 1 का पदम गुना रिटर्न देता है। हैप्पीनेस भी ऐसे ही, तो उसकी भी विधि बताता है। अब मुझे निर्णय करना, हरेक को अपने हाथ में है, कहा निर्णय मुझे करना है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दी है, समझ दी है, निर्णय करना है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। आप कहेंगे इनको तो इतनी बुद्धि है ही नहीं है। हाँ, इतना प्यार करो आप, एक दिन आपको ही लूट के चला जाएगा। लेकिन क्रूर प्राणी है बहुत, उसको अगर आप प्यार करते हो वो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है एक्स्ट्रा, तो बुद्धि। उसको आप राय दे सकते हैं, करना न करना उसके हाथ में है, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इतना ही। लेकिन आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, यही करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आत्मा को स्वतंत्रता दिया है। तो यहां ये स्वतंत्रता है कि मुझे जो चाहे, ज्ञान सुनने के बाद भी तब बाबा को कहना पड़ता है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ते कौन बनाता है नंबर, इनको ऐसा क्यों, इनको ऐसा क्यों, ये मुझे पूछना है कि मैंने तन कितना लगाया, 1 ही मिनट बस इस यज्ञ की। तब आप देखना कलयुग और स्वर्ग में यही अंतर है। किसी के बहुत बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, क्यों? किसी के पास इतना धन है, घर में खाने वाले कोई नहीं है। किसी के पास खाने वाले इतने हैं लेकिन धनी नहीं है। तो ये डिफरेंस तीनों में किसने किया, भगवान ने ऐसी रचना रची, यहां प्रश्न आता है। तो इस कलयुग को, इस दुखी संसार को सुखमय बनाता है, तो व्यवस्था देता है। तो इन तीनों को समान करना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस इक्वल होना चाहिए, एक ज्यादा एक कम नहीं। तो ये उसकी विधि वो बताता है। बच्चे इस विधि के अंदर अगर आप करते हो तो आप सभी, सब भी जितने इधर बैठे हैं, सब भी एक जैसा अगर करते हैं तो सभी एक जैसे बनेंगे। बाबा ने कभी नहीं कहा मैं किसको प्रजा बनाता हूं, किसी को रॉयल फैमिली वाला बनाता हूं, नहीं, सभी मेरे राजा बच्चे हैं। राजयोग सिखाना है। फिर भी हरेक अपनी समझ, निर्णय शक्ति से, पुरुषार्थ से नंबर वार बन जाते हैं। तो मुझे पूछना है कि ये तन कितना समय, कितना मिनट्स मैं इस यज्ञ की सेवा में लगाता हूं। अगर इसमें कोई कमी है तो मेरी, उसकी दोष नहीं, भगवान ने ऐसे मुझे बीमारी दिया नहीं। ये समझ भावना में लोग बोलते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तब कहा ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है। तब कहा सत्संग से सदगति होती है, सत्य ज्ञान। आज ही बाबा ने मुरली में कहा तो ये सत्य ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता है। ज्ञान माना रोशनी है, वह अंधेरा नहीं है। ये क्यों, ये क्या, एक्चुअली ज्ञान वो है, उसके सुनने के बाद किसी के मन में अगर प्रश्न उठता है तो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। कंप्लीट रोशनी नहीं, थोड़ा अंधकार है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत दफा कहा कि बच्चे अनुभव शेयर करो। सब लोग चाहते हैं आप अपना अनुभव बताओ, ऐसा नहीं इधर से कलेक्ट किया, इधर से किया, इसने सुना, वो सब आपको सुनाया, नहीं, आप अपना अनुभव बताओ कि ये तन कैसे लगाना चाहिए, कितने लगाना चाहिए। अगर आप मुझे इसमें अनुभव पूछते हो तो हमने शुरू में यज्ञ में आने के बाद 3 ही लक्ष्य रखा, 3 के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है, एक योग, एक सेवा और ज्ञान। ज्ञान सुनना चित्र से विद पढ़ाई के समझा है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और किसी के लिए नहीं आए। हाँ, ये पढ़ता है ये नहीं पढ़ता है, मुझे किसी ने ड्यूटी नहीं दिया कि ये क्या करता है देख लो। बाबा ने कहा एक बाप को हम उसके पास आए हैं, उसको देख रहे हैं, और मैं जितना पढ़ता हूं वो मेरे लिए है, मैं जितना धारणा करता हूं तो मेरे लिए है, मैं पद पाने आया तो मुझे देखना है। तो सेवा के लिए हमने एक व्यवस्था ऐसा शुरू में किया कि बहुत आते थे पहले शुरू में कोर्स करने के लिए फॉरेनर्स, ये मनोहर दादी रोज कहते थे आप इसको मिलो, पहले मनोहर दादी मिलती थी फिर कहती थी आप मिलो इनको, तो सेवा भी करना, बहुत सेवाधारे भी नहीं थे, बहुत कुछ सेवा करना है और सवेरे से नींद भी नहीं होती है, सवेरे 4 बजे योग भी करना है। तो क्या होता था, हम ऐसे व्यवस्था करता था कि बाबा ने कहा बच्चे एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, सेवा भी मुझे करना है, क्योंकि मेरा भाग्य है, मनसा सेवा भी करना है, तो कैसे दोनों संभव है। तो देखता था इस समय समय है, इस समय सब किसको टाइम देता, इस समय मैं मिलता हूं, इस समय मैं ये सेवा करता हूं, खाने का समय, सोने का समय, तो वो सेवा में दे दो जहां मार्जिन है। तो सवेरे से रात तक की व्यवस्था करनी पड़ता है, उसको बाबा कहता है चार्ट बनाओ, कहां मेरा समय व्यर्थ जाता है, कहां मैं लगा सकता हूं। तो उसके कारण क्या होता था, एक सेकंड भी खाली नहीं था, इतना समय नींद, इतना समय सेवा, समय पर योग, क्यों दीदी मनमोहिनी थी, एक्यूरेट अगर नहीं बैठा आप, 8-10 ही थे कुमार, बहुत नहीं थे, तुरंत पूछतेंगे आज आप कहां गए थे, योग में नहीं आए थे। एक्यूरेट दीदी आकर बैठती थी सवेरे 4 बजे, शाम को 6:30 बजे, किसी प्रकार से आप लेट हो गया कहीं ना कहीं मिलेंगे, पूछेंगे जरूर, तो अपने आप अलर्ट हो जाते थे। तो हर प्रकार से सेवा के अंदर अपने आप को, क्यों हम ये करता है ये नहीं करता है। मुझे याद है सेवा में शुरू में थोड़े लोग होने के कारण हर रोज रोटी कम पड़ जाती थी, थोड़े से थे, हमको याद है 5 किलो की खिचड़ी बनती थी, आप सोचना रात को 5 किलो, तो रोज रोटी कम पड़ती थी, कोई नहीं होता था, लास्ट में हम होता था, तो भोली दादी कहती थी अरे जाके आटा बनाओ रोटी बनाओ, दादी आप उनको बताओ ना वो तो गए है उधर, हम तो मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। अरे आप ओवर टाइम कर रहे हो, आपके लिए वो नहीं आता है, बहुत अच्छा है, आपका भाग्य बनाने आए हो, क्या आपको अपना भाग्य नहीं बनाना है, बाबा आपको चांस दे रहा है भाग्य बनाओ, वो करता है नहीं करता छोड़ दो, तो उसको मिलेगा, आपको ओवर टाइम है ये। उस समय भोली दादी के शब्द है, तब लगता था नहीं मुझे मेरा भाग्य बनाना है, वो आए उन्होंने नहीं किया, एक दिन तो कर सकते हैं, रोज ही है, रोज ही खुट जाती है, और पहले था एक भी वेस्ट नहीं करना है, एक दाना भी उतने के उतना। जब दीदी थी, बाद में दादी आने के बाद एक नियम किया, दादी ने कहा 100 लोगों का खाना बच गया तो चलेगा लेकिन खूटना नहीं चाहिए। तब हॉट केस लाया, उसके अंदर खाना रखते थे, क्योंकि शांतिवन से इधर उधर से बहुत देरी से आते थे, गाड़ी चलाने वाले हैं, लेट आते थे, खाना नहीं होता था, और वेस्ट नहीं करना चाहिए ये लक्ष्य था, एक भी रोटी नहीं बचती थी। तब कहा कि जो आप कर रहे हो ये आपके लिए है, औरों को नहीं देखो, हमारा 95% पर दर्शन सहज है, ये क्या करता है, ये नहीं करता है, मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मेरा भाग्य। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये स्लोगन है, स्व परिवर्तन, स्वयं को देखो, स्वयं का भाग्य आपके हाथ में, आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, बता सकते हो, करना न करना उसके ऊपर है। ये ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट रहता है तब हमारी नजर किसी देव किसी व्यक्ति पर नहीं जाती है, अपने ऊपर जाते हैं, अपने आप को देखते देते हैं। तो अपने आप को कोई देखता है तो परदर्शन पर निंदा ये सब बात आती नहीं है, जो कुछ कर रहा वो नहीं कर रहा उसका है, उसको हम उठा करके इधर नहीं बिठा सकते हैं, ड्रामा में हरेक का अपना पार्ट। ये सारा ज्ञान अगर बुद्धि में रहता है तब कोई भी परचिंतन निंदा ये होती नहीं है। ये ऐसा करता है, ये ऐसा हाँ करता है जरूर, उसका अपना लक्ष्य है, आप क्या कर सकते हो। तो ये समझ, तो कहा तन कहां लगाना चाहिए। अभी इधर एक प्रश्न आता है, बहुत दफा आपने क्लास सुना होगा कि अब एक प्रश्न इधर आया कि एक भाई कहता है, भाई जी मेरे पास बहुत धन है, मैं धन देता हूं बाबा को, लेकिन तन बहुत बुजुर्ग है, बहुत बीमार हूं, मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, मैं दूसरों से सेवा लेता हूं, तो क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा। यहां प्रश्न आया, मेरे पास धन है, तन ठीक नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो, बीमार हो गया हो, मैं इस तन से कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास धन है तो मैं बाबा को धन देता हूं, तो क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा। यह प्रश्न आता है, तो इस पर सोच लो, क्योंकि नियम है व्हाट यू सो, जो आप बोएंगे वही मिलेगा। वो कुछ नहीं देता, बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं देता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं विधि बताता हूं, इसलिए मेरा नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की मैं विधि बताता हूं, उस विधि पूर्वक जितने आप चलते हो उतना आपका भाग्य है, उसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई निवारण नहीं, कारण नहीं, मैं बीमार था, ऐसा था, ये कारण तकदीर को बताना है, कोई सुनने वाला कोई नहीं, तो हमको करना है। तब प्रश्न आया, इसके लिए सोचो कि अगर मैं धन लगाता हूं तो बाबा ये देगा। साइंस ने या भगवान ने कोई अभी तक ऐसी नियम नहीं बनाया कि आप गेहूं का बीज बोलो तो चावल उग जाएगा, है ऐसा है, ऐसे कोई चमत्कार नहीं किया, ये बोलो तो ये हो जाएगा, नहीं, जो बोएंगे वो होगा। तो सोचना है मुझे कि ये तन बीमार होने के लिए, जैसे बाबा था शुरू में, बाबा की भी व्यवस्था थी, साकार ब्रह्मा बाबा की मुरली सुनाई, सभी को बाबा लेके जाता था वॉकिंग करने के लिए, बाबा के पहाड़ी पर ले जाएगा, सारन अकेले का चक्कर लगाते, बाबा आगे आगे जाता था, कहते था मैं इंजन हूं, मेरे पास डबल इंजन है, तो बच्चे इतना फास्ट नहीं चल सकते थे, बाबा के पास डबल इंजन कैसा, बाप और दादा दो, तो बाबा फटाफट, क्योंकि शरीर का भी ध्यान चाहिए, ऐसे नहीं योग कर रहे हम शरीर ठीक हो जाएगा, नहीं, ये पांच तत्वों से बना हुआ है, इस पांच तत्वों को, पांच तत्वों की व्यवस्था है, उस अनुसार शरीर को, इसलिए जगदीश भाई को बाबा ने कहा था कि सेवा बहुत करते हो लेकिन शरीर का ध्यान नहीं दिया। सेवा है लेकिन ये शरीर आपको, बाबा ने कहा इतना वैल्यूबल है, तब आज कहा हमारे जीवन के हमारी वैल्यू कौन कम करता है, क्यों खुशी नहीं रहती है। कल भी कहा था ये वैल्यूबल जीवन शरीर है, ऐसा नहीं सोचना बीमार है कुछ नहीं है तो ये छोड़ दिया तो अच्छा होगा, छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे, ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे। बहुत लोगों के पास आज की दुनिया में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन के कारण ये संकल्प आता है शरीर छोड़ देना है, तो कहां जाएंगे शरीर छोड़ के, छोड़ने के बाद दूसरा कहां तैयार है, दूसरा बनाओ तब ये छोड़ो, तब दूसरे, ये छोड़ते ही एक सेकंड भी रुकना नहीं पड़ेगा कहीं, ये छोड़ा उधर गया, तब कहा अवस्था यहां बनाओ तो वहां व्यवस्था होंगी, यहां अवस्था चाहिए। अगर हम जीवन में सत्युग में कहीं भी कहो, अगर हमारे जीवन में सब प्रकार की व्यवस्था चाहिए, कंफर्ट चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी प्रकार की प्राप्ति सुविधा चाहते हो तो यहां अवस्था, ये विधि नीति है, नियम है, यहां अवस्था चाहिए। जैसी मेरी यहां अवस्था है वैसी वहां व्यवस्था है। तो इसके लिए सोच के रखो कि अगर धन देंगे आप तो तन निरोगी काया वरदान मिलेगा नहीं। तब इस कलयुग में देख लो किसके पास इतना धन है, लेकिन तन सदा बीमार है, हेल्थ भी, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी, खुश भी है, लेकिन शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी है। होते हुए भी खा नहीं सकते हैं। एक जगह देखा हमने कि सोने की थाली, सोने का चम्मच खाने के लिए, चलो खाने के लिए बैठो। हमने कहा बाबूजी आप भी बैठो ना, मेरे तकदीर में कहाँ है? अगर आपके तकदीर में नहीं था, ये लंदन की बात है, आपके तकदीर में नहीं था तो मुझे कैसे खिला रहे आप? मुझे आप देर खिला रहे हो तो आप भी मेरे साथ बैठो। हमको पता नहीं था ये सभी। फिर कहने लगा आता हूं, तो इंजेक्शन लगा के आया एक चम्मच थोड़ा नाम के लिए। कहते मेरे तकदीर में कहां है? तो ये अवस्था हो गई है। तो इसलिए बाबा कहता है किसी प्रकार से, बाबा को किसी को दोष नहीं है, तो अपने, और जो करता है वो अपने को देखते रहो। स्वदर्शन, वो स्वदर्शन नहीं, सत्युग त्रेता द्वापर, वो नयों के लिए। एक साल तक, एक साल जो ज्ञान में चलते आते हैं उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, तो उनके लिए वो चार धाम की यात्रा, हम यात्री नहीं, हम निवासी है। तो स्व का दर्शन करो बार बार कि मेरा, मैं क्या कर रहा, 24 घंटे मेरे कहां जा रहे हैं? सारे कलप का आधार ये संगम है। उधर जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता डायरेक्टर हमारे साथ है। बाबा ने कहा बच्चे जितना मुझे यूज करना चाहते हो मैं अपने आप दे नहीं सकता हूं, अगर मैंने किसी को दिया तो मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। मेरे से जितना, उसको एक शब्द यूज किया बाबा ने, यूज मी, जितना यूज करना चाहते हो। और हर एक को हर प्रकार की चांस है। ऐसे आप, हम कभी कभी कहते हैं मुझे चांस ही नहीं है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। अगर किसी के अंदर कोई योग्यता है तो उसको चांस देता है बाबा, और वो निस्वार्थ भाव से शिव बाबा की सेवा अर्थ अगर यूज करता है तो भाग्य बना देता अपना। हमने देखा, हमारे पास कोई एक आरटी नहीं था, जब मैं यज्ञ में आया पता ही नहीं था, बिल्कुल मशीन क्या, मैंने देखा कुछ किया नहीं है, तो भी अगर आप हाथ लगाते हो तो सिखाता है, बुद्धि देता है, कर सकते हो। तो ये आई तन की बात। तो तन ऐसा नहीं हमने धन दिया तो हमको निरोगी काया वरदान मिलेगा, नहीं, धनवान बनेंगे। ये बाबा ने, हाँ हाँ हाँ, तो वो बताता हूं, वो भी आता हूं, तो मन धन आता है दोनों, पहले तन के बताता हूं। तो यहां प्रश्न आया कि तन के एक 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 खोलो, फिर तीनों को मिलाएंगे। तो तन, फिर कहेंगे हमने ये दिया तो ये नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। तब कहा बाबा ड्रामा शब्द कहां आता है, वहां लेके आया हूं। ये ड्रामा शब्द क्यों आया कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता? तब बाबा शब्द कहते ड्रामा है, मैं क्या कर सकता हूं, विधि बताया, मैं अगर किसी को कुछ करूं तो मेरा हिसाब किताब बन जाएगा, मैं भी चक्कर में आएगा, मैं न्यूट्रल हूं। तो बाबा मेरा तन से, मैं बुजुर्ग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ड्रामा। तो भगवान भी हाथ उठाते, कभी कहता बच्चे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसके लिए हमें देखना चाहिए किस प्रकार उसकी व्यवस्था है। अब प्रश्न आएगा जवाब इसका, अगर आप कहते हो भाई जी मेरे तन में कुछ नहीं होता है, मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मैं औरों से सेवा लेता हूं, तो क्या करूं उसका निवारण? धन बहुत है, मन खुश है, लेकिन धन कहां से लेता, धन कहां से लेके आऊं, धन कहां से लेके आऊं? हां, आपके पास धन है, आप किसी को धन देकर उनसे सेवा ले सकते हो। आप कमाई ले लो, मजदूर को हम बुलाते हैं सेंटर में, कहीं भी ये सेवा करो, धन लगाया आपने उसके, अब किसी के द्वारा सेवा तो हो गई ना, परसेंटेज मिलेगा लेकिन सेवा हो गई। धन लगा के औरों से सेवा कराओ तो आपके नाम से सेतब बाबा ने, जैसे आपने कहा सेंटर बनाया, म्यूजियम बनाया, और कुछ बनाया, आप नहीं कर सकते, आपने किसी को धन देकर तन के जो आपकी सेवा करना था वो आपने किया, लेकिन वहां भी परसेंटेज है। स्वयं का तन से लगाना, परसेंटेज है, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेते हो इंटरेस्ट है, बैंक इसमें रखते हो, मूल अलग है, इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि मजदूरों को पैसा देते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो पैसा लेके गया, लेकिन आपके नाम से काम हो गया। ऐसे धन के आया, धन आपके पास बहुत है, तन बहुत अच्छा है, लेकिन धन नहीं है, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे हम पैसा बाबा के यज्ञ में कुछ डालना चाहते हैं। पता है बाबा बहुत दफा उदाहरण देता है, बूढ़ी माताएं एक रुपया भी भेजती है, बुजुर्ग है कुछ नहीं, गरीब है, बाबा मेरा एक ईंट लगाना है ना, कुछ नहीं होते हुए भी। तो धन की व्यवस्था है, गरीब श्रीमंत बनना कोई बनाता नहीं है, जितना हमने धन लगाया। अब धन कहां से लेके आओ, हमारे पास सही नहीं है, ये भी आप सोच के रखना जवाब। अगर किसी कोई कहता मेरे पास एक भी, अभी कन्या है टीचर है, उनके पास कोई धन नहीं, बाबा ने बहुत दफा उदाहरण दिया, मम्मा का एग्जाम्पल, कुछ लेके नहीं आए, लक्ष्मी ही बनी, कैसे सोचना है। तो यहां अगर मेरे पास धन नहीं है तो मैं धन तन से सेवा कर, 24 घंटा मैं सेवा करने तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी मेरे पास नहीं मैं यज्ञ में डालू, जानता हूं, तो क्या करे? यहां भी ऐसी परिस्थिति है, तो इसकी भी कुछ निवारण, हर चीज का निवारण होना चाहिए, तो धन कहां से लेके आओ? तब निवारण आया कि आपके पास धन है, हाँ कहीं काम करो। आप कहेंगे बाहर जाके काम करो, नहीं, हर एक की अपनी पर्सनालिटी मर्यादा भी है। बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा किसी के पास बर्तन मान लो कुछ मिलेगा, तो ऐसे एकदम डिग्रेड वाला आज नहीं है, वो समय था। आज अगर मेरे पास तन अच्छा है तो मैं सेंटर में ही, अगर बहन जी को एक सेंटर है तो सेंटर में भी तो बहन जी को 100 रुपया देना पड़ता है। हमने देखा दिल्ली पांडव भवन में देखा, आई विटनेस बताता हूं, हम कमरे से ऊपर आ रहा था नीचे, तब देखा 5-6 भाई कपड़े अच्छे पहने हैं, मुरली क्लास और बर्तन साफ कर रहे। हमने कहा ये क्या है, अच्छे कपड़े पहने हैं, एक 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 बर्तन साफ कर रहे। तो मैं नाश्ता करने बैठा तो पुष्पा बहन राजबहन थी, बहन जी ये भाई सफाई कर रहे। हाँ, यहां गुलजार दादी ने नियम बनाया, मुरली क्लास के बाद रोज 5 भाई एक दिन 5 बहनें ऐसे एक एक को ड्यूटी दिया, उनको जाते से मुरली क्लास के बाद सेवा करके जाना है, तो कपड़े पहने, उसके बाद उनको सीधा ऑफिस जाना है, कपड़े चेंज नहीं करेंगे। तो हर एक, तब मैंने भी कहा इतना इनसे सेवा लेने के बदले, दादी है मधुबन की है, एक माई को इधर से ले जाओ, महीने एक दफा 2 महीना रही, नहीं नहीं, सबको तन, अपना भी भाग्य बनाना है, व्यवस्था देख लो। हमने कहा एक मजदूर को इधर से माइयां हैं इधर, तो लेके गए, अगर दिल्ली में नहीं मिलता है तो एक माई ले 2 महीना 1 महीना रही, दूसरे को भेजेंगे, नहीं, उनका भी तन लगना चाहिए, वो स्व इच्छा से करते हैं। सबने अपने आप, दादी ने पूछा सबको कैसे सेवा करना चाहते हो, दादी आप सबको ऐसी व्यवस्था करो, मुरली क्लास होते कभी माताएं उनका, पहले भाई माताएं सभी बुजुर्ग होते हुए भी कोई पोच के रखेगा रोज 5-5, ये व्यवस्था है, तन भगवान की सेवा में लगा रहे। धन गरीब हो कोई भी हो, तन भी लगना चाहिए। तब प्रश्न आया कि अगर हम तन अच्छा है तो भगवान की सेवा में लगाओ, कितना लगाता हूं? अभी फिर प्रश्न आया, कोई भी पूछता है बहने देवी बन गई, इतनी भारत में देविया है, बाकी क्यों नहीं है? हाँ, एक झंड मैं कहता हूं, कभी एक माता घर में है, 4 लोगों की खाना बनाती है, सेवा करती है, एक सेंटर में बहन जी है, कितने लोगों के लिए भोग बनाती है? हम एक एक बार सुनता हूं, बहने कहती है हम सवेरे 3 बजे उठ करके सब तैयार करते भोग के लिए, करके रख के बाद में माता या और कोई आके सब करते, फिर घर का सामान सब निकाल के देना पड़ेगा ना, तो तन उनको भी बाबा ने 4 हाथ नहीं दिया, 2 ही हाथ दिया है, ये 2 हाथ कितने लोगों की सेवा कर रहा है, उनको भी 2 हाथ दिया है, किसी को बाबा ने 4 हाथ नहीं दिया, वो भी 2 हाथ किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये 2 हाथ मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, यहां व्यवस्था है। तन कहां लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं? अगर आपके पास तन ठीक नहीं, धन दे करके करो। अब आया धन नहीं है तन अच्छा है तो धन कैसे आएगा? तब प्रश्न है, अगर आप सेंटर में 100 रुपया किसी को दें, आप सब्जी लानी पड़ती है, दूध लाना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है, खेती में गार्डन में पानी डालना पड़ता है, 100 रुपया देना पड़ता है, तो कोई भाई माता है कहते बहन जी आप, मैं सेवा करती हूं, तो वो अगर आके रोज गार्डन में पानी देता है, सब बर्तन साफ करता है, बाबा के भंडारे से 100 रुपया बच गया ना, वो आपके नाम में जमा हो गया। धन अगर अभी भी इकोनॉमी करो कहता है बाबा, अगर आपने ये बचाया ये आपके नाम में जमा हो गया, नहीं तो इतना पैसा भंडारे से जाता है, बाबा भी नहीं अब दान किया हुआ है, तो वो दान किया हुआ धन जाता है तो आपके नाम से जमा हो गया, धन देने की जरूरत नहीं है। ये धन की सेवा, कितनी मैंने बचत किया है, हर एक के हाथ में है। अगर आप पूछेंगे पहले यज्ञ में ऐसे था, कोई भी यज्ञ से ना कुछ भी ऐसा होता नहीं था, दादी भी कहती आप कमाई करो, मधुगिरी करो, है ना, कहती थी दादी आप मधुगिरी करो, आप कहेंगे अपने आप, अभी जो कहो ये चाहिए मांगने का प्रश्न नहीं है, हर चीज कुछ भी करना है आप मधुगिरी करो, आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए अपने आप मिलेगा ऐसा नहीं, शुरू में जब ही बाद में व्यवस्था हुई तो आपको भी कुछ करना है, तो आपका भाग्य जमा हो रहा है, तब भगवान के घर में हम देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं, अगर ले रहे हैं तो भी मेरा हिसाब किताब बन जाता है, 100 रुपया मैंने मेहनत कमाई लिया, मेहनत किया, खाया पिया सब कुछ किया, 100 रुपया का 100 रुपया इक्वल हो गया, जमा क्या हुआ, और मेरा कितने जन्मों का ऋण है, वो ऋण भी चुक्त करना है, जमा भी करना है, भाग्य भी बनाना है उच्च पद के लिए। तब कहता था डॉक्टर आनंदन करके मधुबन में था मद्रास का, वो हम कहता था कभी ये रखो नहीं, सिर्फ एक मुरमुरा लेके रखता था, भेलपुरी छोटा सा पैकेट दे दो, ये दान किया हुआ है, एक एक व्यक्तिगत व्यक्ति जीवित है, कहता ये दान किया हुआ है, नहीं इतना ही दे दो, तो मनुष्य को दान किया हुआ था ये भी ऋण चढ़ता है, हम देने के लिए आए हैं, यहां से कुछ भी लेना, कभी हम कंप्लेन करते हैं मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये मिलता है इसको, ये मिला इसको, ये मिलता है, हाँ वो अपना भाग्य खाता है, हम खा पी करके यहां भाग्य खत्म करना चाहते हैं कि जमा करना चाहते हैं, तो भगवान बाबा के घर में हर एक दान देता है, तो समर्पित होने के वाने के बाद भी टीचरों को बाबा ने कहा जमा, हम भी बाबा के घर में, मैं जमा क्या कर रहा हूं कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये व्यवस्था ये चाहिए, ले रहे हो मिलेगा भी, देता भी बाबा, लेकिन जमा जितना कमाई किया खाया पिया यहां खत्म, तो ये भी व्यवस्था याद रखना। इच्छा जब करते हम कि सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, त्रिकाल दर्शनी नहीं है, हर प्रकार का ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है तब कहा बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, समझ बुद्धि के अंदर में, समझ हर परिस्थिति हर कर्मों के अंदर हर जगह पर मेरा इसका कारण क्या है, और व्यवस्था संसार में ऐसी है, इतनी स्वतंत्रता है, अगर ध्यान से सोच देखेंगे तो कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है इस ड्रामा के अंदर, इतनी स्वतंत्रता हर एक को दिया है, लेकिन कुछ मेरे जीवन में कुछ होता है उसका कारण मेरा ही कर्म, आप ड्रामा पेपर हिसाब किताब कुछ भी बोलो साधारण शब्दों में, तो वो हमें स्वीकार नहीं होता है, है ना, कभी आप सोचेंगे कहां आप कैसे कहते हो ये मेरा कर्म, उन्होंने ऐसे किया, दिखाई देता है ये ऐसे करते हैं, लैक पुलिंग है, इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने ऐसा किया, बहुत सारे दूसरों पर दोष लगाना सहज है, क्यों दिखाई नहीं देता है, तब हमने एक दिन सोचा तो कैसे कहते हो मेरा हिसाब किताब है ये, तब आता है कि बाबा ने कहा, और रामायण में आता है सीता पवित्र है कि अपवित्र है, प्रूफ क्या, अग्नि में डाल देता है, ये अग्नि ये पांचों तत्व आपको कभी भी दुख देने के लिए नहीं, सेवाधारी है। तो अगर तो कहा कि अगर किसी को पवित्र है क्या है कैसा पता चले, अगर मुझे मैं को ये बीमारी कुछ भी आया मेरे जीवन में, ये मेरे कर्म है, दिखाओ मेरे कर्म कहाँ है, मैंने कुछ भी नहीं किया इस जन्म में। मुखड़ा देख ले प्राणी, स्वप्न बताता है। अगर पांच विकारों के स्वप्न है तो बाहर किसी ने किसी प्रकार के बीमारी, कोई इंसल्ट, कोई ईर्ष्या, किसी ने किसी प्रकार से बाहर आएगा। ऐसे नहीं इस कर्म के लिए यही होगा, इसके लिए ये होगा, नहीं। अंदर बीमारी है वो किसी भी रूप में कहीं से भी बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद तब माया के अनेक रूप है, कहा एक ही रूप नहीं, माया जो बाहर आती है किसी भी रूप में आ सकती है। अगर आप हम कहते हैं मेरे अंदर एक भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं है, अंदर सफाई है, कोई कितना भी कुछ भी करे तो आपका बाल भी हिला नहीं सकते, करने वाला करेगा, क्योंकि माया हर प्रकार से, बाबा ने कहा अंतिम में ऐसी परिस्थिति आएंगी माया अपना हर प्रकार का अस्त्र का प्रयोग करेंगी, एक ही नहीं पांचों तत्व पांचों विकार एक साथ वार करेंगे। अगर क्यों करेंगे, वो तो करेंगे, उनका धर्म है कर्म है, लेकिन मैं अगर मैं योग्य हूं मेरे ऊपर उनका असर नहीं होगा। स्वयं की शक्ति आज तपस्या जो बाबा क्यों कहता है, समय दिया है बच्चे ऐसी तपस्या करो, अपने को चेकिंग करो, अपने आप को देखो, नहीं तो क्या होता है बिजी सेवा में इधर देखा उधर देखा, इसमें बिजी हो जाता है, स्वयं को देख नहीं सकते हैं। मेरे मन में ये विचार क्यों, ये अवस्था क्यों, ये क्या, हम कैसे क्या बनना चाहते हैं, तो धन कैसे तन अभी मन की व्यवस्था आया तो मन कैसे करेंगे, सदा हर्षित रहना चाहिए। तो गुलजार दादी बहुत दफा कहती है, गुलजार दादी के क्लास में सुना आप, खुश रहो खुशी बांटो। जब मैं शुरू से सोचता था अरे दादी कहते खुशी बांटो, खुशी कहां से लेके आओ, कहां से बांटो, कैसे बांटो, तो जवाब नहीं था, होता था बता दिया खुश रहो खुशी बांटो, तो खुशी कहां से मिलेंगी, तब पता चला सोचते थे। हाँ आज भी आप देख लो, अगर कोई भाई मिला, कोई बहन मिली, कोई माता जी, बहन जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, और उनका चेहरा देख लो आप, मुस्कान आती है, खुशी आती है, आपको भी लगता है मैंने कुछ किया, मैंने कुछ सेवा किया, कुछ दान दिया। तो ज्ञान और कुछ देने जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों के हाथ में ज्ञान ही है, कुछ नहीं है। तो आज सुनी हुई मुरली अगर आप एक दिन प्रयोग करके देखना, सवेरे से रात तक, तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। ज्ञान सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हमने 10 दफा पढ़ी, एक घंटे के बाद पूछो क्या सुनना, 10 दफा सुनी, अंदर कितना, बुद्धि के अंदर कितना गया। अगर बुद्धि के अंदर समझ है, बुद्धि ये सारे शरीर के इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, अगर कर्म करते है, अगर नजर कहीं जाती है तुरंत बुद्धि कहती है नहीं ज्ञान जागृत है, तो बुद्धि रोकती है इंद्रियों को, इंद्रिय जीत कब बनते हैं। तो ज्ञान का उपयोग, तो ज्ञान का उपयोग कौन करेगा, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, लिख के रखा हुआ है, जेब में भी है, पैसे जेब में रखो जाओ और मार्केट में मांगो देगा, पैसा दे दो सामान ले लो। तो उसको इंग्लिश में एक शब्द आता है, ज्ञान को जागृत रखो, एक्टिव रखो। जागृत कैसे रखे, तो सवेरे से रात तक हम सेवा के फील्ड में बार बार डायरी देखते नहीं रहेंगे, एक शब्द लिख के हमने ऐसे किया, एक ही मुरली के पॉइंट जो धारणा वाला रोज नया नया लिख के रखता था शुरू से, कभी कोई भी मिला बताते रहता देखो बाबा ने ये कहा, तो एक संस्कार बन गया। अगर मैंने आज किसी को नहीं सुनाया, शाम को स्नान करते समय याद आएगा आज मैंने मुरली किसी को नहीं सुनाया, चिंतन भी नहीं किया, बहुत व्यस्त है, रियलाइज होता है कि अंदर है। अगर ज्ञान अंदर है तो रियलाइज कौन करता है, हाँ। और अगर हम कुछ परिवर्तन, क्रोध छोड़ना चाहते, बुराई छोड़ना चाहते, कुछ अपने आप नहीं जाएगा। अगर आप देखना ये 5 जुलाई के मुरली में अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा 50 साल ज्ञान में चलने के बाद भी संस्कार नहीं जाएंगे, जब तक मैं रियलाइज नहीं करूं तब तक परिवर्तन नहीं है। तो रियलाइज करने के, परिवर्तन करने की उसके अंदर एक विधि बताया बाबा ने, बहुत सुंदर, मैंने पहले भी क्लास में सुनाया था कि विधि क्या है इनको परिवर्तन करने की। इनको मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, अपने को परिवर्तन करना चाहता हूं, रियलाइज। तो रियलाइज कैसे होगा? ज्ञान चाहिए। जो मुरली जब सुनी हमने, एक ही महावाक्य, बस बूंद बूंद मिलकर के 30 दिन के बाद 30 महावाक्य जमा होते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी दिव्य नहीं अभी, एक साथ में सब कुछ याद रखो, हाँ रखना चाहिए। वो डॉक्टर साहब रख सकते हैं, उनको देखो पेशेंट को देखते याद आता है ये दवाई इधर है ना, वो देखता नहीं डॉक्टर, पेशेंट आने के बाद कौन सी दवाई दे, डॉक्टर पेशेंट को देखा ये दवाई तुरंत लिख देगा। तो बाबा दो लोगों को याद करता है, एक वकील और एक डॉक्टर। तो हमें भी ऐसे बनना जरूरी है। तो रोज एक ही बूंद बस, कल दूसरा सुनाएगा बाबा। तो कम से कम सवेरे से रात तक बार बार अपने को पढ़ाते रहे, आज बाबा ने ये कहा, क्या कहा, क्या मैं ये कर सकता हूं, करना चाहिए। खाना बनाना है, सब्जी बनाना है, अपने आप नहीं बनती है, सब्जी लाने से नहीं बनती है, उसकी विधि है, प्लानिंग है, पहले काटो धो लो फिर इतनी आग पर जलाओ फिर इतना मसाला डाल तब खाने के लायक बनता है। यहां भी ज्ञान सुनने से भी आचरण में कभी नहीं आता, देखना जानते हो। तब बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान है भी, वो आचरण में नहीं आता है। तो आचरण करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है। अगर मुझे क्रोध मुक्त होना है, हाँ ये बहुत गुस्सा करेगा, बहुत कुछ अन्याय करेगा, तो मुझे सहन शक्ति डेवलप करना पड़ता है। बुद्धि को नहीं, मुझे इन्होंने कुछ भी कहा कुछ भी करने दो, मुझे सहन करना है। ये प्री प्लान चाहिए, ये ऑन द स्पॉट नहीं होता है, पहले बुद्धि को पढ़ाना पड़ता है। अगर आज सारे दिन में मैं इनके इनके सेवा के संबंध में आऊंगा, इनका स्वभाव ऐसा है जानता हूं मैं, तो मुझे प्रिपेयर होके जाना है, पहले मुझे प्रिपेयर होना है। तो प्रिपेयर होने के लिए, तो ये मुझे आज क्रोध मुक्त बनना है अपने आप नहीं बनेगा, पहले त्याग करना पड़ेगा, सिखाना पड़ता है। अगर इन्होंने ऐसा किया मैं सहन कर लूंगा, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, वो कुछ भी करने दो, पता है इनके पास जाना है और इनका स्वभाव मैं जानता हूं, तो प्रिपेयर विथ आर्मी। जब मैं युद्ध के मैदान में जाती, अस्त्र है होते उनके पास, अस्त्र चलाना आता नहीं तो क्या फायदा। तो बाबा ने ज्ञान रूपी अस्त्र दिए है, तो अस्त्र को प्लानिंग करो। और आज ही अगर एक पॉइंट का आप सोचेंगे, आप पूछेंगे, हम कभी भी क्लास कई करना है, बहुत दफा देखा फॉरेनर्स का एक ऑन द स्पॉट टॉपिक चेंज करते हैं, अभी भी आपके बहन जी ने 3 दफा चेंज किया, पहले कुछ टॉपिक दिया, दूसरा कुछ दिया, तीसरा टॉपिक अब चेंज किया, हम कभी सोचता नहीं हो क्यों। पहले खाना बना के रखते हैं, कोई आया उठा के देना है। अगर खाना बनाए नहीं, कोई आने के बाद खाना बनाएंगे आप? मुझे याद है शुरू में ज्ञान सरोवर में क्विज क्वेश्चन आंसर, ऐसा गीत की प्रश्न क्विज कहते हैं ना, प्रश्नोत्तर ऑन द स्पॉट इंस्टेंट। तो हम 3 बैठे थे, तो मुझे बैठते समय दिया नाम, टॉपिक दिया इस पर आपको बोलना है, हैप्पीनेस के ऊपर। जैसे इसने बोला मेरा टर्न आया, तो पीछे से चिटकी दिया आपको साइलेंस के ऊपर बोलना है। अब मैं तैयार करके आया तो चिटकी देखा, और समय भी है इतना नहीं, 5 मिनट के अंदर, तो साइलेंस शब्द आया, तो मैंने एकदम एक डेफिनेशन बोला, तो अंदर प्रिपेयर है, तुरंत निकलता है। साइलेंस इज व्हाट, शांति क्या है, क्या बोलूं मैं, तो तुरंत एक, मुझे आज भी लगता है कि कैसे बुद्धि क्लीन है तो कैसे देखता, तुरंत एक डेफिनेशन बताया, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस, प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। अगर इनको देखने के बाद सारा मार्केट, इन सबको मैंने देखा, मेरे ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं देखा मैंने, तभी बाबा ने कहा यहां कौन बैठ सकता है, कौन दृष्टि दे सकता है, कोई भी योग कर सकता है ना, नहीं, ये भी व्यवस्था बताया, देखना यहां कौन बैठ के योग कर सकता है, जिसकी दृष्टि, अगर दृष्टि दे रहा कही ये बहन जी बहुत अच्छे, ये भाई था वो, तो किसी का अगर मेरे ऊपर प्रभाव है, मेरा योग नहीं, मैं प्रभाव डालने के लिए आया हूं। तो अगर मेरा उसके साथ संबंध है तो आपका प्रकाश दृष्टि देने की व्यवस्था है। तो अगर मैं प्रभावित हो गया, आई गेट इन्फ्लुएंस, मैं अशांत हूं अंदर से, इनको देखते याद आया, हां यही भाई था वो, उसने आज मिला, चला तूफान, तो आई प्रभावित, इन्फ्लुएंस प्रूफ, प्रभाव मुक्त शांत स्थिति। तो उसके लिए बाबा ने एक व्यवस्था दिया कि हमको देखते हुए संसार में मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भक्ति मार्ग में राम 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 करते जाते हैं। तो यहां मन को बिजी रखो, किसी को भी देख लो, देखते ही मन में मेरे चलना चाहिए, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो। अगर मन खाली है, जरूर इसको देखते मेरे मन में इसके प्रति विचार आना सौ, क्या बोलो, नियम है, आना ही है, नहीं आना चाहिए संभव नहीं है, उसके बुद्धि का काम है, इसके देखते इनके अंदर चलेगा। तो बाबा ने कहा माया नहीं आना चाहिए, माया प्रूफ, मन बुद्धि को बिजी रखो, देखते पहले से तैयार रहो, जैसे वो बाहर आते ही माला हाथ में ऐसे फिरते रहती है, देखते रहेंगे, हम रास्ते पर जा रहे हैं, इनको देखते बहन जी, बहन जी कौन है, कहां से आए, आएगा प्रभाव। और योग में बैठते ही देखना, अरे बहन जी क्यों आई, यह व्यर्थ रावण माया क्यों आया, सारे दिन में प्रभाव। अगर सारा दिन में किसी का मन बुद्धि पर प्रभाव नहीं तो लाइन क्लियर, तो हम सन्यासी तो नहीं है। कितने प्रकार के लोग, कितने लोगों के संबंध व्यवहार में आते हैं, वी गेट इन्फ्लुएंस। कर्म करते कपड़े पर दाग नहीं लगना चाहिए, संभव नहीं है। हां तब बाबा कहता है ध्यान दे दो, कई बहनें देखना किचन में सब करेंगे, एक भी दाग नहीं लगेगा, और एक कोई जाएंगे इतना हल्दी सब कुछ लगा हुआ है, ये अटेंशन, जो अटेंशन शब्द यूज किया वहां, सबको देख रहा, इनको लगेगा मैं इनको ही देख रहा हूं, ये मुझे न देख रहा है, पूरा मेरा रिकॉर्डिंग करता नहीं, उसको देखते हुए भी इनकी मेरे अंदर विचार नहीं, ये मुझे चेकिंग करना पड़ता है, मैं किसी को देख रहा हूं क्या, इनका प्रभाव मेरे अंदर आया अभी नहीं, जब मैं खाली बैठू तब आएगा, जब योग में बैठू, जब खाली होते ही बुद्धि खाली होगी, चित्र क्या क्या दाग कहां कहां वो सब दिखाई देगा। तो बुद्धि एक ऐसी सूक्ष्म चीज है ये, तो बुद्धि को दिव्य रखने के लिए ज्ञान चाहिए, दिव्य बुद्धि अपने आप नहीं बनती है, स्वच्छ बुद्धि बनाना चाहिए, सिर्फ योग से नहीं, विधि है, ज्ञान हमारे बुद्धि में चाहिए, और वो बार बार अपने को पढ़ाते रहो, रिवाइज, और दान करो, जितना दान करते हो विश्लेषण होता है, बुद्धि चलती है, वो भी कुछ पूछेगा, आर्गुमेंट करेगा, ये बहुत अच्छा है, अपने आप चिंतन बहुत कम चलता है, आप सुनाओ तो वो चार को सुनाएगा, तो संघर्ष होता है, तब मक्खन निकलता है, तो डिस्कशन भी जरूर है, बात करो, लेकिन ज्ञान के अलावा इधर उधर का बात नहीं करो। तो ये चारों ज्ञान का दान, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ऐसे नहीं, कारण नहीं किसी को, मैंने मुरली नहीं सुनी तो किसको बता रहे हो, अपने तकदीर को, मन खुश रहे संभव ही नहीं है, और उसमें भी घोर कलयुग है, कोई ना कहीं ना कहीं से कुछ प्रभाव है ही है, कितने आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, कहां क्या होगा पता नहीं चलेगा, किस समय। तब बाबा ने कहा अंत तक, क्योंकि अंत ला ये शरीर जब तक है, इसके जींस के अंदर ये है, वो कभी भी प्रकट हो सकता है, वातावरण मिल गया, जैसे आप देखते हो बीज सूखा हुआ है, जैसे बादल आ गए बीज अंकुरित होता है, पानी लगा नहीं अभी तक, बादल आ गए तो भी बस सूखा बीज अंदर रखते हुए भी अंकुरित हो जाता है, हवे से भी वाइब्रेशंस कैच करता है। तो ये शरीर है, इन जींस के अंदर ये संस्कार है, जब तक ये शरीर नहीं गया तब तक पढ़ाई चाहिए, याद योग चाहिए अंत तक। तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के बाबा ने बहुत एक्सप्लेनेशन किया, इनके अंदर बहुत प्रश्न है कि मेरे से ये नहीं होता, मुझे याद ही नहीं रहता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। कोई कहता मैं लिख नहीं सकता हूं, पढ़ नहीं सकता, आज ही किसी एक बहन ने कहा, माताओं को कितना कहते हैं माताएं से घर में नहीं आओ, तो चार पांच माताएं बुजुर्ग आके बैठ जाती है, और बहन जी उनको बड़ी बहन जी आप घर में क्यों बुलाते, हम नहीं बुलाते, वो कहते हम मुरली के बगैर रह नहीं सकते हैं, बहन जी हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम सुन नहीं सकते हैं, कुछ को हमको नहीं, हम वो आके बैठते हमको सुनाओ तो क्या करें। तो हमने कहा आप अपने कमरा कहीं खाली हो और दूर बैठो, सबको मास्क पहनो बोलो और जरूर उनकी से उनको भेजो नहीं, ना नहीं करो, लेकिन ऐसे करना एक जगह पर एक समय छोटा कमरा है 3-4 को बुलाओ, बाकी दूसरी माताओं को बोलो 1 घंटे के बाद फिर आप आना, कुछ व्यवस्था ना, मना नहीं करो, भगवान का ज्ञान देने में ना नहीं करना। ये व्यवस्था कहां आई थी, विदेशियों का मीटिंग चलता है, लास्ट है एक बताता हूं नियम, श्रीमद भी पता है, विदेशियों का मीटिंग चलता है जैसे हमारा एनुअल, तब हर मीटिंग में बुलाते हैं, तब एक दफा उन्होंने ऐसे कहता सेंटर में विदेश में समस्या है तो उनको मधुबन कैसे सॉल्व करता है, मधुबन का नियम नीति क्या है। तो 10-10 सेंटर का एक एक ग्रुप बनाया और बैठा, तो एक सेंटर के टीचर ने पूछा भाई जी सेंटर बाबा ने कभी सबको मना किया कि मुरली किसी को देना नहीं, जिसको चाहे सेंटर में आके पढ़ो। तो एक भाई कहता है मुरली मांगता है और हमने नहीं दिया, उसने दादी जानकी दादी को बोला और दादी ने उसको मुरली दिया, तो ये नियम कैसे है, अब इसका जवाब दे दो आप, सोचो कैसे डिस्कशन, ऐसे प्रश्न होता, सारा रिकॉर्डिंग चलता है, विदेशियों के टीचर्स बनने का मीटिंग चलता है ना। तब बाबा ने व्यवस्था दिया है श्रीमत भी व्यक्ति परिस्थिति और समय, ये 3 देख के श्रीमत यूज करना है। तो मैंने कहा वो भाई कौन, हम भी जानता था, मेरे पास भी वो बात आई थी, तो वो गवर्नर का लड़का है, बहुत हर प्रकार के सेवा करता है, वो आपके क्लास में रोज आके बैठेगा, वो व्यक्ति कौन है देखो, आपने मना किया, उसने दादी को बोला, दादी ने लंदन से भेजना शुरू किया, हमने कहा व्यक्ति को देखना चाहिए, आप नियम सब जगह, नियम सबको नहीं है, व्यक्ति परिस्थिति क्या है इनकी, ये बीमार है आ नहीं सकता है सेंटर में, आप कहेंगे मुरली नहीं देंगे आप तो क्या होगा, उसका परिस्थिति देख लो, समय कौन सा, अभी लॉकडाउन है आ नहीं सकते हैं, तो परिस्थिति देख लो तब श्रीमत यूज करो, श्रीमत ऐसे नहीं है, इसलिए हर प्रकार का ज्ञान चाहिए, अध्ययन चाहिए, सब ज्ञान को स्टडी करके फिर ने, तब बाबा ने कहा सबका सुनो, निर्णय आप ले लो, निर्णय लेकर के करना न करना आपके ऊपर, खाना देने वाला सब कुछ दे रहा है, आपको खाना चाहिए, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको अच्छा लगा खा लो, नहीं कहना तो बाजू में रख दो, मुरली के अंदर भी कोई बात आती है आपको पसंद है ओके, क्योंकि बाबा के पास बुजुर्ग भी है, बड़े भी है, बच्चे भी है, सबको है। कल बाबा ने कहा बच्चों को भी ज्ञान सुनाओ, उनको भी अपना बाबा, ये बाबा है ये है सुनाओ उनको, उनका भी भाग्य बनना चाहिए, बच्चे करके छोड़ो नहीं। समझ में आया, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, क्लियर, कैसे तन मन, और किसी को नहीं देख लो, ये हमारे अंदर, मेरे आपके नहीं, मेरे अंदर ही है, मैं बताता अपने को देखता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं स्वयं को, इसलिए कहा टीच औरों को पढ़ाना कैसा है, कहते हैं टीच द सेल्फ, स्वयं को पढ़ाओ, तो स्वयं को जितना हम सुनाते हैं आपको भी तो हमको ही रियलाइज होता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान सुनते विदेशियों के बाबा महिमा करता है, ज्ञान सुना और सेवा में लग गए, सेंटर खोलने लग गए, है ना, ज्ञान जितना आप सुनाते हो आपको हमको रियलाइज होता है बुद्धि के अंदर, अरे मैंने इनको सुनाया ये मैं नहीं कर रहा हूं, और मेरे पास उसकी कुछ निवारण है, कुछ कारण है, वो मेरा व्यक्तिगत है, और कोई मुझे नहीं पूछता है, इनको पूछता, अरे ये ऐसा उनको पूछने से, इसको कहा सद्गुरु का निंदक, अगर कुछ मेरी कमी दिखाता है मुझे पर्सनल, आज नहीं तो कल, इसको बाबा ने वो 5 जुलाई की मुरली में, अव्यक्त मुरली में सुनाया, देखना महिमा करो, अगर उसको रियलाइज करना, ये मम्मा की विशेषता है कि किसी को चेंज करना चाहते हो, रियलाइज करना चाहते हो तो उसकी महिमा करो, महिमा करने के पीछे सोचना बहुत डीप है, महिमा करने से उसको अपने आप अंदर जाके रियलाइज होगा और वो चेंज करना, हमारा लक्ष्य इनको सजा देना नहीं, डिग्रेड नहीं करना है, क्योंकि भगवान का बच्चा कनिष्ठ है, साधारण भी है, नया भी है, कैसा भी है, तो उसको सजा देना ये धर्म के अंदर, आध्यात्मिक के अंदर नीति नहीं है। ओके, ओम शांति। अभी बहन जी कहती थी कमेंट्री करना चाहिए कि योग बड़े हैं नयों को कमेंट्री करते हैं, कमेंट्री करना चाहिए है? विद्या देवी कहती करना चाहिए। छोटे बच्चों को खाना हाथ से खिलाया जाता है, हमने कहा बड़ों को तो बड़े हैं सभी, ठीक है चलो। ओम शांति, ओम शांति। मैं एक शुद्ध स्वच्छ पवित्र आत्मा इस ब्रकुटी सिंहासन पर बैठा हूं। एक कमल आसन है, इस कमल आसन पर मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा पांचों तत्व पांचों ज्ञानेंद्रियों से मुक्त हूं। पांचों तत्व का संयोग से अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश इन पांचों तत्वों ने सारे कल्प में मुझे अपार सुख दिया। ये पांचों तत्व निरोगी है, निर्विकारी है, इन पांचों तत्वों के जिन्स में भी पांच विकार के अंश नहीं हैं। इन पांचों तत्वों का संयोग के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। इनके सहयोग से ही मैं निश्चिंत इस कमल आसन पर बैठा हूं। ऐसे ये पांचों ज्ञानेंद्रिया भी आंखों में पूरी रोशनी है, दिव्यता है, प्राणवायु अपानवायु में संतुलन है, जीभ पर स्वाद है, होठों पर मुस्कुराहट है, कानों में ब्रह्मनाद सुनने की क्षमता है, ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रिया निर्मल निरोगी निर्विकारी है। सारे कल्प में इनका संयोग इतना मिला, धन्य है ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, धन्य हूं मैं आत्मा, इनका संयोग से ही मैं सारे कल्प की यात्रा सफल तय किया, अभी अंतिम समय आ गया, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी दिल से शुक्रिया अदा कर। इनके सहयोग से ही मैं निश्चिंत निर्भय इस अकाल तख्त पर बैठा हूं। आत्मा सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान के तख्त पर बैठा हूं। बाबा, मैं आपको देखता हूं, जैसे आप ब्रह्मा के तन में पधारे, जैसे सूर्य उदय होता है, कमल का फूल खिलता है, जैसे आप इस धरती पर पधारे, मैं इस बंधनों से मुक्त हो गया, मुझे किसी का बंधन नहीं है, आपने मुझे सब बंधनों से मुक्त किया। शिव बाबा, अब मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूं। बाबा, आपने आने में देरी कर दिया। मैं आपके सन्मुख हूं। बाबा, मैं आपका हूं। मैं आपका अधिकारी संतान हूं। शिव बाबा, आपके सर्व शक्तियों के ऊपर मेरा अधिकार है। आपके सर्व शक्तियों से मैं अपनी झोली भर रहा हूं। मैं अपने आप को संपन्न बना रहा हूं। शिव बाबा, आपकी कितनी सुंदर पवित्रता की शक्ति। मुझे आपके तरफ आकर्षित करती है। मैं आपको देखता ही रहूं। शिव बाबा, मैं आपके जैसे ही पवित्र बन के दिखाऊंगा। शिव बाबा, आप शांति के सागर हो। शिव बाबा, परम धाम कितना शांत शीतल है। मैं भी ऐसे शांत शीतल बन जाऊंगा। शिव बाबा आप ज्ञान के सागर हो, आपके ज्ञान रत्नों से मैं अपने आप को भरपूर कर रहा हूं। शिव बाबा आप सबको सुख देते हो, मैं भी आपके जैसे ही मास्टर सुखदाता बनूंगा। शिव बाबा आप भाग्य विधाता हो, रोज कितनी विधियां बताते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हो। हे भाग्य विधाता आपका कोटि कोटि बार धन्यवाद।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करो मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, बाबा भूल सकते नहीं तुम्हें भूल के जो प्यार मेरा मुझे तुमसे मुझे तू